कर्मों का प्रकरण चल रहा था, उसमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम कुछ भी करते हैं, उस करने के दो भाग होते हैं। एक तो पुण्य भाग है, एक पवित्र भाग है। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार दूसरों के हित के लिए हम काम करते हैं, वो पवित्र कर्म, पुण्य कर्म कहलाते हैं। और स्वार्थ में फंसकर दूसरों के नुकसान के लिए कर्म करते हैं, वो पाप मलिन कर्म कहलाता है। तो कर्म हम करते हैं, कर्म का फल मिलेगा। फल मिलने में अनुकूल परिस्थिति पर प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी। ये बहुत मार्मिक बात समझने की है कि हमें जो सुख और दुख होता है, ये प्रारब्ध कर्म का फल नहीं है। ये बात नई है। कर्म का फल है परिस्थिति, सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति सामने आ जाती है, वो कर्मों का फल है। क्योंकि कर्म बाहर से किए जाते हैं, तो भीतर का दुख और सुख है उसका कारण नहीं है, सुख दुख का कारण वो नहीं, वो बाहर की परिस्थिति। कर्म किए जाने के अनुसार पुण्य कर्म करेंगे तो अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी, और पाप कर्म करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी। वो पड़ेगी समय पर, अभी इसका पता नहीं लगता। जैसे खेती की जाती है, बीज बोए जाते हैं, तो समय पा करके पनपते हैं और फल देते हैं। ऐसे किए हुए कर्मों का भी फल मिलेगा, कब मिलेगा इसको कुछ पता नहीं है। सब बीज एक समान समय नहीं लेते हैं, कई बीज बहुत जल्दी फल देते हैं, कई बहुत देरी से फल देते हैं। धान के पौधे थोड़े महीनों में फल दे करके सूख जाते हैं, पर नारियल का पौधा कई वर्षों में जाकर फल देना शुरू करता है। तो ये बीज अलग अलग होते हैं कर्मों, इस वास्ते किस कर्म का फल कब मिलेगा पता नहीं, परंतु फल मिलेगा परिस्थिति। उस परिस्थिति को लेकर हम सुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, इसमें हमारी प्रतंत्रता नहीं है। परिस्थिति के बदलने में तो है प्रतंत्रता, परंतु परिस्थिति मिलने पर हम प्रसन्न होवें और नाराज होवें, इसमें हम प्रतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। भगवान भी अर्जुन के लिए कहते हैं, न तुम शोचित महर्षि नैवम शोचित महर्षि नैनम शोचित महर्षि, और अंत में कहते हैं मां शोच, तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। तो शोक चिंता करना न करना इसमें मनुष्य स्वाधीन है, परिस्थिति में स्वाधीन नहीं है। कर्मों का फल स्वाधीन है, कर्मों का फल है ना, वो तो आएगा, परंतु उसमें सुखी दुखी होना है हमारा काम है। तो परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होते हैं ये मूर्खता है, क्योंकि परिस्थिति बदलने वाली, आप न बदलने वाले, अब न बदलने वाले बदलने वालों को लेकर सुखी दुखी हो गए तो गलती है ना। ये पास में होकर निकल जाएगी, अनुकूलता भी बह जाएगी, प्रतिकूलता भी बह जाएगी। हम तो हैं जैसे कि तैसे ही रहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान की कृपा से आती है, जो पहले किए हुए कर्म है वो अनुकूलता प्रतिकूलता देकर खत्म हो जाए, जिससे आप कर्मों से रहित हो जाए, मुक्त हो जाए, अपना कल्याण कर लें। कर्मों से रहित होने में कल्याण से मुक्ति होती है, इस वास्ते अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है। अरे सुखी दुखी होते रहते हैं तो फिर तो जन्म मरण में चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में चढ़ जाएंगे, बस दुखी सुखी दुखी होते ही रहेंगे, कभी ये झंझट मिटेगी नहीं। इस विषय में एक बात और ध्यान देने की है कि शुभ काम करते हैं उस शुभ काम से भी दो चीज बनती है, और अशुभ पाप कर्म करते हैं उससे भी दो चीज बनती है। एक तो उसका फल बनेगा जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाएगा, और एक उसके संस्कार पड़ेंगे, एक विद्या होगी जिससे अगाड़ी शुभ अशुभ काम में प्रवृत्ति करने के लिए हमारे मन में आएगी। जैसे सत्संग किया है आपने और उसमें आपको अच्छा लगा, तो उस सत्संग से दो चीज मिली, एक तो सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा और एक सत्संग के द्वारा रुचि होगी कि भाई चलो सत्संग करो, सत्संग का समय आएगा चलो। तो रुचि आपके भीतर प्रेरणा करेगी, वो रुचि बाध्य नहीं करती, फल तो बाध्य करेगा, फल तो आएगा सामने। रुचि है, उस रुचि को आप काम में ले भी सकते हैं नहीं भी। ऐसे पाप कर्म कर्म करने का परिस्थिति रूपी प्रतिकूल परिस्थिति, उसका फल रूप प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, उस प्रतिकूल परिस्थिति का भोग होगा, वो दुखदायी मानते हैं। तो प्रतिकूल काम जो अशुभ किए, प्रतिकूल परिस्थिति आवे, अशुभ काम किए उससे एक संस्कार पड़ेंगे जो कि पाप करने की रुचि पैदा होगी, वो रुचि पैदा होगी, उस वो रुचि आपको बाध्य नहीं करेगी। फल अंश तो आपके जबरदस्ती आ रहेगा, आप सुखी हो में दुखी हो इसमें स्वतंत्र है, फल अंश आ रहेगा, परंतु रुचि है उसके अनुसार काम करने में न करने में आप स्वतंत्र हैं, रुचि वो होती है भीतर। जैसे कोई बही खाता लिखता है, एक दो बही खाता लिखा जाएगा, और एक लिखने की विद्या आ जाएगी। ऐसे ही शुभ अशुभ काम करने की विद्या आती है, उसको संस्कार कहते हैं। और एक फलांश होता है, तो अभी काम करते हैं उसको क्रियमान कहते हैं। ये कर्म सबके सब एक जगह संचित हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उस भाग को संचित कहते हैं। और वो संचित कर्म में से प्रारब्ध बनते हैं। जैसे रोजाना रुपये कमाते हैं और तिजोरी में धर देते हैं, और उनमें से 5-7-10 रुपये घर खर्चा जेब खर्चा के लिए निकाल लेते हैं और दिन में कमाते हैं, तो कमाते हैं वो तो क्रियमाण है, और भीतर धरा हुआ वो संचित है। और जो हाथ खर्चे घर खर्चे के लिए निकाल लेते हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं, वो आरंभ हो गया, अब खर्च होना आरंभ हो गया। तो प्रारब्ध से फल भोग आरंभ हो जाता है, शुभ अशुभ दोनों ही, और वे जितना फल देकर वो खत्म हो जाते हैं, अपनी बारी निकाल खत्म हो जाते हैं, वो कोई स्थिर रहने वाला नहीं। अब वो संस्कार है भीतर काम करने की जो रुचि पैदा हुई है, तो वो रुचि संचित से भी होती है, प्रारब्ध से भी होती है। रुचि अंश खुला रहता है, फल अंश संचित में बंद रहता है। प्रारब्ध में उसका फल आरंभ हो जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। मन रुचि संचित की भी बंद नहीं होती है, वो रुचि आती रहती है। उस रुचि में पीछे से पीछे काम किए हैं, वो रुचि पहले आवेगी। प्रारब्ध में ऐसा नहीं कि पहले किया हुआ कर्म फल भोग पहले होगा, पीछे किए हुए कर्मों का फल भोग पीछे होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें तो जो विधान है उसके अनुसार उसका फल भगत पर आवेगा, कब आवेगा इसका पता नहीं। परंतु रुचि अंश है वो खुला रहता है। उसमें एक बात बताइए, आपने ध्यान दिया होगा, पीछे से पीछे करते हैं वो रुचि पहले आती है। जैसे किसी बर्तन में अनाज भर दिया जाए, गेहूं भर दिया, बाजरा भर दिया, जौ भर दिए, चना भर दिया और मक्की भर दी, तो लो तो मक्की पहले आवेगी, तो ऊपर का अंश आवेगा। ऐसे आप नाटक सिनेमा देखते हैं तो वो संस्कार आवेगा, और सत्संग करते हैं तो वो दब जाएगा, सत्संग का संस्कार आने लगेगा। ऊपर भराई भरी हुई बात पहली आवेगी, परंतु भीतर की भरी हुई भी कभी कभी आती है। मान लो आपने अनाज भरा, पर भीतर में आपने लहसुन और प्याज भी भर दिए, तो कभी कभी उसी गंध भी आ जाएगी। ऐसे पुराने कर्मों के संस्कार भी आ जाते हैं, पर मुख्य संस्कार रहते नए कर्म करे उनके। वो जो याद आ जाती है, जो संस्कार उसका रुचि होती है, उसके अनुसार काम करते हैं तो वो काम में मददगार होते हैं। भजन स्मरण करते हो उसमें सबके बरोबर प्रगति नहीं होती, एक सत्संग में सुनते हुए मनुष्यों के एक समान रुचि पैदा नहीं होती, एक समान उद्योग नहीं होता, एक समान वो बात लगती नहीं, एक समान नहीं लगती। इतने नहीं है, किसी को कोई बात बढ़िया लगेगी, किसी को कोई बात बढ़िया लगेगी, किसी को कोई बढ़िया लगेगी। आपस में मिलकर आप बात करो तो बहनों बहनों में बात करें तो उनमें पता लगेगा, भाई भाई आपस में बात करें कि बोलो सबसे बढ़िया बात क्या आई, कि आज ये सबसे बढ़िया आई। दूसरा कहते देखो ये बढ़िया आई आज। तीसरा कहते आज तो अमुक ये बात बढ़िया आई। तो वो क्या है, आपके पुराने संस्कारों के अनुसार बात आती है वो आपको प्रिय अधिक लगेगी, और संस्कारों से विरुद्ध है वो ठीक लगेगी, उतना असर नहीं करेगी। तो पुराने संस्कार भी काम करते हैं, पर वो प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध तो फल भोग का नाम है, वो रुचि करने में संस्कार है संचित के, उसमें प्रारब्ध के भी आते हैं और संचित के भी आते हैं। उनका जल्दी पता नहीं लगता कि ये संचित के संस्कार है, ये प्रारब्ध के संस्कार है, ऐसा पता नहीं लगता। तो फिर दोनों कैसे पता लगावे, आपके जो अगारी काम धंधा व्यापार आदि करने की मन में आती है, रुचि होती है, उस रुचि में प्रारब्ध मुख्य होता है। एक ही बाजार में आप रहते हैं, उसी बाजार में एक आदमी माल बिक्री करना चाहता है और एक आदमी उसी माल को खरीदना चाहता है। तो बिक्री करना चाहते उसके मन में बेचने की आ गई, खरीद करने वाला उसे खरीदने की मन में आ गई। ये जो आती है ना, इसमें प्रारब्ध के संस्कार हैं। आपको सुख दुख भोगाने के लिए आपके मन में जच गई कि ये माल तो अभी तेज होने वाला है, ऐसा करके आपने खरीद लिया और हो गया मंदा, लग गया घाटा। तो घाटा लगने के लिए, घाटा प्रारब्ध का फल है, वो प्रारब्ध फल भुगताने के लिए आपके मन में उसकी तेजी जच गई। और आपके मन में जची ये तो काम अभी मंदा पड़ने वाला है, वस्तु ये तो माल मंदा होगा, ऐसा जच गया। तार से, चिट्ठी से, अनुमान से आपका जहां मंदा होने वाला है, ऐसा अगर आप बेचना चाहते हैं कि बिक्री कर दें, परंतु आपके नफा होने वाला है तो बिक्री होगा नहीं। आप करने पर भी चेष्टा करने बिक्री नहीं होगा, उस वक्त बिक्री नहीं होगा, फिर तेजी आएगी तो बिक्री हो जाएगा। तो लाभ होने वाला होता है तो मन में वैसी वृत्ति पैदा होती है, उसे वो बिक्री करोगे नहीं तो नफा हो जाएगा, पीछे तेजी आने पर नफा हो जाएगा। तो ये नफा नुकसान होना है, ये प्रारब्ध का फल है। अब नफा होने पर आप राजी हो गए चाहे नाराज हो गए, नुकसान हो पर राजी हो गए चाहे नाराज हो गए, इसमें आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे भाई, नफा होने से मन राजी होता है, नुकसान होने से नाराज होता है। तो नफा होने से राजी, नुकसान होने से नाराज, ये मनुष्य का काम नहीं है। ये तो कुत्ते में भी है, गधे में भी है, कौए में भी है। मन के अनुकूल होने से राजी हो जाएगा, प्रतिकूल से नाराज हो जाएगा। अरे मनुष्य पशु पक्षियों में नहीं, पौधे होते हैं घास धान आदि के, जो कि स्थावर है। वर्षा होने से सुबह देखो तो पत्ती सुंदर हो जाएगी उसकी, जल मिल गया बरसात का, बड़ी शुद्ध हो जाएगी, तो उसको भी अनुकूलता मिली है। और वो वर्षा न हो और घाम पड़ेगा तो पत्ती कुमला जाएगी। तो ये कुमला जाना प्रतिकूलता होने से, प्रतिकूलता से राजी नाराज होना तो पशुओं में भी, कुत्तों गधा में कहा नहीं, पौधों में भी होता है। अगर उसी में आप रहे तो फिर आपकी मनुष्यता क्या हुई? आपकी मनुष्यता तो यह है कि सुख दुख रूप से पाप पुण्य की परिस्थिति आई और वो भोगने से खत्म हो गया, तो पाप भी खत्म हुआ, पुण्य भी खत्म हुआ, तो हम पाप और पुण्य दोनों से ऊंचे उठ गए। इस वास्ते बहुत अच्छी बात है, कर्मों का बंधन छूटा तो अच्छा हुआ। उसमें भी पुण्य की परिस्थिति सुखदायी होती है, उसमें पुण्य खर्च होते हैं। दुखदायी की परिस्थिति प्रतिकूल होती है, उसमें पाप खर्च होते हैं। दुख आने पर मनुष्य नाराज होता है, अरे दुख आने पर राजी होना चाहिए। अभी सुना ना, कुंती ने दुख मांगा, तो दुख से क्या होता है, पाप नष्ट होते हैं। तो पाप नष्ट होना चाहिए, किसी को पूछा तुम्हारे पाप नष्ट होना चाहिए कि पुण्य, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा पुण्य नष्ट हो जाए, हमारे पाप नष्ट होना चाहिए। तो प्रतिकूल में पाप नष्ट होते हैं, फिर घबराते क्यों? अरे कर्जा किसी का लिया है 100 रुपया, तो देते समय घर से खर्च होता है, तो खर्च तो होता है, मैं कर्जा उतर गया इतना का बढ़िया काम हुआ। वो कर्जा रहता तो ब्याज से देना पड़ता, चिंता रहती, और रुपये तो खर्च हो गए पर कर्जा उतर गया, बड़ा बढ़िया काम हुआ। ऐसे बुखार आया, किसी मृत्यु हो गई, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा कर्जा उतर गया, हम तो शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। ऐसे प्रसन्नता होनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए, उसमें राजी होना चाहिए कि पापों का नाश हुआ। अब फिर बात ले लेते हैं वो संस्कार वाली, ये तो फल की बात हुई। अब जो करने की विद्या एक आ गई, एक रुचि पैदा होती है, उस रुचि को हम सत्संग के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जो शुभ रुचि है, अशुभ रुचि, अशुभ संग बन गया तो उस रुचि को बढ़ा लोगे। तो संघ और शास्त्र और विचार ये आपके अगाड़ी काम करने वाली रुचि में वृद्धि और ह्रास करने वाली है। ध्यान दें जरा, भीतर की रुचि और विचार और संग और शास्त्र ये अच्छे देखोगे तो अच्छे संस्कार पुष्ट हो जाएंगे, और संग कुसंग करोगे, विचार खराब करोगे, पुस्तक भी पतन की नीचे दर्जे की पढ़ोगे तो आपके पाप के संस्कार पुष्ट हो जाएंगे, वैसे ही करने लग जाओगे। तो कराने में संग विचार शास्त्र ये है संस्कार पहले के। तो बुरा संग मत करो, बुरी पुस्तकें मत पढ़ो। आजकल के जो सिनेमा के है अथवा गल्प है, आजकल के क्या कहते हैं उनको, उपन्यास है, भूल जाता हूँ, ये जो पुस्तकें हैं ना जिसमें गंदी गंदी बातें रहती है, इनको पढ़ोगे तो आपके संस्कार गंदे हो जाएंगे। अच्छे संस्कार है वो रुक जाएंगे, और गंदे संस्कार हो जाए, गंदे संस्कार में गंदा संग मिल जाए तो गंदगी में चले जाओगे, वो पाप करने लग जाओगे, जिसका भयंकर दंड अगाड़ी भोगना पड़ेगा। वो करा दिया किसने कि कुसंग ने, आप उसमें सहमत हो गए, तब आप सहमत न हो तो कुसंग आपका कुछ कर नहीं सकता। ही हो गए हाथ कुसंगी मिलो केता, चंदन भुजंगा साथ कालो लागे किसनिया। चंदन के सर्प जाकर लिपट जाता है, तपत होती है तब, तो उसके करने से क्या सांप का कालापना चंदन के लग जाता है? ऐसे कुसंगी मिलो केता, ही हो गए हाथ, आपका हृदय आपके हाथ में है तो कुसंग मिलने पर भी आपको ठीक रखेगा, और भाई आप विचलित हो जाओगे तो कुसंग मिलने पर वैसे ही हो जाएगा, संस्कार खराब भी पड़ जाएगा, भाई उधर ले जाएंगे। इस वास्ते मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए, विचार संग और शास्त्र ये अच्छे और ऊंचे दर्जे के पढ़ने चाहिए, नीचे दर्जे पढ़ना नहीं चाहिए। तो ऊंचे दर्जे नीचे क्या होता है, हम क्या कसौटी लगाए, अभी ये ऊंचे दर्जे गए हैं, ये नीचे दर्जे गए हैं। जो संसार में फंसाने वाले, पाप कराने वाले नीचे दर्जे गए, और जो पुण्य और परमात्मा की तरफ ले जाने वाले वो ऊंचे दर्जे गए। ऊंचा परमात्मा है, नीचा पतन है, वो नरक है। तो नीचे दर्जे की पुस्तकें नीचे दर्जे में ले जाने वाली है, उनका संग नीचे दर्जे जाता है, उसके संस्कार नीचे दर्जे जाता है, तो ऐसा संग मत करो। इस वास्ते मनुष्य को संग अच्छा करना चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए, पुस्तकें अच्छी पढ़नी चाहिए, तो आपका ऊपर उन्नति में रास्ता चलेगा जरूर, और वैसे ही आपके कर्म होने लगेंगे। तो संस्कार अंशों के अनुसार ये बातें होती है। अब सत्संग करते हैं और सत्संग के संस्कार आपके हैं, और वैसे ही संस्कार मिलते हैं तो वो पुष्ट हो जाते हैं। इसमें जरा ध्यान दें, आप भक्ति मार्ग में चलने वाले हैं और भक्ति मार्ग की बातें मिलेगी तो उसमें आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। ज्ञान की बातें चलती है तो अच्छी तो लगती है, परंतु विशेष पुष्टि नहीं होगी। अगर आपके ज्ञान मार्ग के संस्कार हैं, उस मार्ग में चलते हो तो ज्ञान का विवेचन होगा, वो आपको बहुत प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा। भक्ति वालों को उतना रुचिकर नहीं होगा, कारण कि उसके भक्ति के संस्कार उतने नहीं हैं, ज्ञान के संस्कार हैं। तो वो संस्कार जिस साधना के होंगे उस साधना में पुष्टि देने वाले ये संस्कार होंगे। परंतु ये याद रखो कि ज्ञान के हो चाहे भक्ति के हो, आपके पतन करने में कारण नहीं बनेंगे, उत्थान में कारण बनेंगे, वे भी सहायता करेंगे। ज्ञान के संस्कार पड़े हुए जब आप भक्ति ठीक होगी और वो संस्कार मिले तो कई दिन सुना वो पट जागृत हो जाएगी, एकदम विलक्षण बातें हो जाएगी। इसमें कई संतों का ऐसा मत है कि भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान मार्ग की बात सुननी नहीं चाहिए और ज्ञान मार्ग वालों को भक्ति मार्ग की सुननी नहीं चाहिए, ऐसा भी आता है। पर मेरा मत ये नहीं है बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ कि जो अपना उद्धार चाहता है उसको भक्ति की बात मिलेगी तो भी उसकी उन्नति होगी, और ज्ञान की बात मिले तो भी उसकी उन्नति होगी। कारण के पतन से ऊपर उठाने की बात है दोनों में ही, इस वास्ते उसके नुकसान नहीं होगा। हाँ, किसी का अंतकरण भक्ति प्रधान है, किसी का अंतकरण ज्ञान प्रधान है, किसी का अंतकरण योग प्रधान है। तो ये जो चीज है भक्ति, ज्ञान और योग, इस विषय में एक बात आप ध्यान देकर सुने। भक्ति में भाव की प्रधानता है, ज्ञान में समझ की प्रधानता है, और योग में, कर्म योग में करने की प्रधानता है। करना, मानना, जानना, तीन ही तो बात है। जानने की प्रधानता ज्ञान मार्ग में, मानने की प्रधानता भक्ति मार्ग में, और करने की प्रधानता कर्म योग में। ये तीन बात बताई। इन तीनों से जो परमात्मा के दर्शन चाहता है, भगवान का भजन चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है, वो भक्ति मार्ग में जाता है। तो ये जो चाहना है प्रेम की, भक्ति की, भगवत दर्शन की, ये कामना नहीं है, ये याद रखना। लोग कहते तुम भी कामना रखते हो, ऐसे अपने उद्धार की, आत्मज्ञान की, तत्व साक्षात्कार की इच्छा होती है, ये भी कामना नहीं है। ऐसे सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की मन में बार बार इच्छा पैदा होती है, ये भी कामना नहीं है। कहते क्यों? ये भी तो कामना, भगवान मिले, भगवान का प्रेम मिले, हमारे भक्ति बढ़े, ये भी तो इच्छा ही है। कि कामना वो होती है जो मिलकर के नष्ट हो जाती है। पुत्र की इच्छा हुई, पुत्र पैदा हो गया, मर जाए तो भी वियोग हो गया, आप मर गए तो भी वियोग हो गया, रहते रहते खटपट होगी तो भी वियोग हो गया, ये कामना होती है। जो नतीजा अंत में टिकता नहीं वो कामना होती है। और भगवान का प्रेम मिलेगा तो मिल ही गया, जन्मांतरों तक नष्ट नहीं होगा। भक्ति आपको जितनी जागृत हो गई, जन्म जन्मांतरों तक वो सदा साथ रहेगी। कारण के भक्ति भगवान की होती है, भगवान सच्चे हैं। कामना संसार के पदार्थों की होती है जो असत्य है, वे कच्चे हैं, इस वास्ते वो कामना कहलाती है। कामना में तो जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, कामना पूरी कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। और भक्ति और ज्ञान, इनकी कामना पूरी हुई है, अधूरी किसी की नहीं रही। उद्योग कम रहा है तो कई जन्म हो गए, परंतु अंत में ये पूरी होगी, क्योंकि सत्य तत्व है, ज्ञान भी सत्य तत्व है, और भक्ति भी सत्य तत्व है, और योग में त्याग है, संसार के भोगों का त्याग। त्याग सत्य तत्व है, भोग सत्य तत्व नहीं, पदार्थ सत्य तत्व नहीं, त्याग सत्य तत्व है। त्यागा शांति रनंतरम। तो इनकी जो कामना है, त्याग की कामना, सेवा करने की कामना, भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन की कामना, भगवत प्रेम की कामना, अपने स्वरूप के बोध की कामना, ब्रह्म प्राप्ति की कामना, ये कामना नहीं है। इसको जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं। ये जिसके जागृत हो जाए वो बड़ा भाग्यशाली प्राणी है, जिसके परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, तत्व ज्ञान की इच्छा हो जाए, और त्याग करने की, दूसरों की सेवा कैसे हो जाए, सब लोग सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसी जो भीतर की भावना है, तो समझना चाहिए कि भाग्यशाली है। इसके संचित कर्म बड़े अच्छे हैं, संग अच्छा मिला है, सत्शास्त्र इसने पढ़ा है, विचार अच्छा इसने किया है, जिससे ऐसी बात पैदा हुई, तो उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो इसको कामना नहीं कहते। कामना तो नष्ट होने वाली होती है। फल पहले काम करते हैं, उसका फल मिलता है, तो काम का भी आरंभ और अंत होता है, और फल का भी आरंभ और अंत होता है, रहता कुछ पास में नहीं, और इसका फल जाता नहीं कभी। ये तो जितना किया उतना हो ही गया, जितने सत्संग के, सद्भावों के संस्कार आपके पड़ गए वे पड़ ही गए। और संसार के भोग कितने भी मिल जाए, कितने भी रुपये मिल जाए, कितना भी आदर मिल जाए, कितनी प्रशंसा मिल जाए, कैसा शरीर भी निरोग हृष्ट पुष्ट हो जाए, पर ये टिकेगा नहीं, ये ठहरेगा नहीं। इसके लिए क्या राजी क्या नाराज हो गए, तो रहने वाला तो है नहीं, ये जाने वाला है सभी। अवश्यम यातार स्थिरतर मुषित्वा विषया खत्म होने वाले हैं। इनके आ जाने से क्या तो राजी हो गए, अरे चलाने से क्या नाराज हो गए। अरे भाई हम दरवाजे पर खड़े हैं, मोटरें बहुत आई, बहुत मोटरें आई, खुश गलत खिलखिल जगा हंस पड़े, राजी हो गए, आ नाचने लग गए। अरे दूसरे दिन जाकर खड़े तो मोटर आई नहीं, तो चिंता करने लगे, जो आज तो मोटर एक भी नहीं आई, रास्ता खाली पड़ा है, चिंता करें। तो समझदार आदमी हमारे को समझदार मानेगा, अरे ज्यादा मोटर आने से राजी हो गए ऐसा, अरे धुआं कम हुआ, धूल कम उड़ी, हर जी कह रहे थे आ गई तो आ गई, नहीं आई ना आ गई, तेरे साथ मन तो रहने वाला नहीं। ऐसे धन आया राजी हो गए, ऐसा धन आ गया हमारे पास और बेहतर बेहतर निकल जाएगा, वो धन रहेगा नहीं, धन टिकता नहीं किसी के पास में। ऐसे जवानी आई सा हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, ये भी चली जाएगी, ये ठहरेगी नहीं। निरोगता आई, मान आया, आदर, ये भी टिकेगा नहीं। वाह 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 हुई, वाह वाह भी टिकेगी नहीं। क्या तू इसमें राजी हुए, क्या इसमें नाराज हुए, ये कोई चीज थोड़ी है, ये तो बहती है बेचारी, बहती बहती चली जाएगी। अरे रहने वाले परमात्मा है, तत्व है, आपके भगवान है, प्रेम है, ये रहने वाला और संसार का त्याग है, ये रहने वाला है, त्यागा शांति अनंतरम, तो ये रहने वाली चीज है। ये रहने वाली चीज की कामना नहीं होती, कामना बहने वाली चीज की होती, तो कामना के त्याग की बात कही है, इसको जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, इनके नाम ये भी इच्छा होती है, ये इच्छा तो बड़भागी की होती है, ये इच्छा संपूर्ण इच्छाओं को खा लेती है, खा जाती है, सब इच्छाओं को खा करके और उसकी पूरी हो जाती है ये इच्छा, फिर पूर्ण हो जाती है। संसार की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई नहीं, होगी ही नहीं, हो सकती ही नहीं। तो कारण क्या है कि आप हो नित्य तत्व और संसार है अनित्य तत्व, अनित्य के द्वारा नित्य की इच्छा पूरी कैसे होगी, आप तो बने रहोगे, ये खसक जाएगी, आपके पास रहेगी नहीं, तो ये पूरी नहीं होगी। और परमात्मा तत्व तो नित्य है, वो पूरी होगी, मिलेगा वो, ऐसे आपका स्वरूप नित्य है, ज्ञान से वो मिलेगा। और संसार के त्याग की इच्छा को तो त्याग नित्य है, आपके बीच में आने जाने वाले आप तो नित्य रहते हो, तो त्याग भी नित्य, इस वास्ते ये चीज मिलेगी, निहाल हो जाओ, इस वास्ते ये कामना नहीं। अब दूसरी बात पीछे ले लेते हैं, पहले छोड़ी हो, सत्संग में कर बैठते हैं तो किसी का सत्संग में लाभ ज्यादा होता है, किसी के लाभ कम होता है, ये क्या कारण है। तो पुराने संचित जो कर्म होते हैं अच्छे, वहां सत्संग मिलता है तो उनको पुष्ट हो जाती है, उनको पुष्ट कर देती है सत्संगति, तो बड़े जोर से उसके लग जाता है। अरे एक के संस्कार वैसे नहीं है पर सत्संग करता है तो उसे थोड़ा लगता है, निष्फल तो जाता ही नहीं। ये सदैव याद रखो, सत्य तत्व की जो चर्चा है, सत्य तत्व का स्वाध्याय है, सत्य तत्व का चिंतन है, चर्चा वो कभी निष्फल नहीं जाती, क्योंकि तत्व सत्य है वो, परंतु संस्कार पूर्व के साथ देते हैं तो जल्दी पनप जाते हैं, नहीं तो देरी लगती है। उसमें भी हिम्मत की जाके हमें तो उसको चलना है, अधिक हिम्मत करो बहुत तेजी से आग बढ़ जाओगे, पहले के संस्कार नहीं है भाई, नए संस्कार बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए किसी पारमार्थिक पुस्तक में नहीं पढ़ा, मैंने देखा नहीं है कि धन कमाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा नहीं है। यही तनुकार फल है विषयन भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, स्वर्ग हो स्वल्प, स्वर्ग की प्राप्ति के स्वल्प, अंत दुखदायी, अंत में वहां भी दुख होगा तो पतन हो जाएगा। तो इस शरीर का फल संग्रह करना और भोग भोगना है ही नहीं। एक बात और है, आप घबराना नहीं, आपका धन नष्ट हो जाए तो समझना चाहिए कृपा हुई है भगवान की, अगर धन ज्यादा हो जाए तो डरोगे, राम 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 राम, खतरा आ गया, इसमें खतरा है भाई। ऐसे ही भजन ध्यान साधन करते हैं, साधु है और उसका आदर महाराज महाराज मेरा लंबा लंबा हाथ जोड़ राम 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 डेंजर है, यहाँ खतरा है खतरा, ये तो धोखा होगा, राम 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 सावधान रहो, और कोई निकल निकल यहाँ से कहाँ आ गए यहाँ ऐसा करे, अब ठीक अब मौज है। तो साधु को ऐसी जगह रहना चाहिए, मैं कहता तो और हूँ करता और हूँ, इस बात आप और तरह समझोगे, परंतु मेरे मन में जची हुई ऐसी है कि निरादर होने से लाभ होता है, आदर होने से खराबी होती, क्या पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, निरादर में पुराने पाप नष्ट होते हैं, तो हम शुद्ध बनते हैं, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें बड़ा आनंद होता है, फायदा होता है, बुखार में बड़ा फायदा होता है, उसमें पापों का नाश होता है, इस वजह से बुखार में समझने वाले की प्रसन्नता बढ़ती है, घाटा लगने पर प्रसन्नता बढ़ती है, निरादर होने पर प्रसन्नता बढ़ती है, निंदा होने पर प्रसन्नता बढ़ती है, आनंद आता है। लोग हमारी निंदा करते हैं और निंदा करके वे राजी हो जाए, काट साट करके निंदा करके प्रसन्न हो जाए, तो बड़ी कृपा की बात, भगवान की कृपा होगी। मन निंदया जन परितोष समेति, लिखा है कि मेरी निंदा से किसी जन को अगर संतोष होता है सुख होता है तो नन्व प्रयत्न सुलभ हो यम अनुग्रहो में, ये मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, मेरे पापों के नाश करने के लिए उद्योग नहीं किया और उसने निंदा कर मेरा पाप दूर कर दिया, तो बिना प्रयत्न मेरे पाप नष्ट हो गए, इससे बढ़िया दिन कौन सा होगा। श्रेयोर्थिनो भी पुरुषा पर दुष्टि हेतु तो दुखार्जितान्य भी धनानि परित्यजन्ति, जो कल्याण चाहते हैं वे पुरुष तो बड़े कष्ट से कमाया हुआ धन खर्च कर देते हैं कि दूसरे लोग राजी हो जाए, इस धन के लेने से राजी हो जाए अथवा पुण्य हो जाए, तो वो तो खर्च कर करके राजी करते हैं, और हमारा खर्च तो हुआ पाप और हो गए वे खुश कितनी बार, इसके समान सस्ता सौदा और क्या होगा, बड़ी आनंद की बात है। कोई निरादर करके खुश हो जाए, कोई निंदा करके खुश हो जाए, कोई दुख दे करके राजी हो जाए, बहुत अच्छी बात, हमारे तो पापों का नाश हो जाए और वो सुखी हो गया, दो काम हो गए हमारे, सुखी हो गया पुण्य हो गया और पापों का नाश हो गया। इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति में जो आनंद है शांति है वो अनुकूल परिस्थिति में नहीं है, परंतु ये हमारी कायरता है कि अनुकूलता को चाहते हैं प्रतिकूलता को चाहते नहीं। बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई बुरी लगती है, खेल अच्छा लगता है, ऐसे संसार के भोग अच्छे लगते हैं और ये नष्ट होते बुरे लगते हैं, तो खेल में क्यों समय खराब करो भैया, पढ़ाई करो, मैं पढ़ाई में परिश्रम पड़ता है, ऐसे दुखों में थोड़ा सा परिश्रम पड़ता है, पर होता है उसमें लाभ, बड़ा लाभ होता है, अंतकरण बड़ा मजबूत होता है, सुखों के भोगने से अंतकरण मैला होता है, कमजोर होता है, जितने सुख अधिक भोगता है उसका शरीर कमजोर होगा, इंद्रियां कमजोर होगी, अंतकरण कमजोर होगा, और जितना दुख भोगता है वो बलवान होगा, श्रेष्ठ होगा। आपको एक बात सुनाऊंगा, ध्यान देकर आप लोग सुने, दो लड़का है, वो साथ साथ ही पास पास में रहने वाले और साथ साथ में ही जन्मे, एक लड़के के पांच सात वर्ष वर्षों की अवस्था में बाप दादा चाचा ताऊ मर गए और अकेला रह गया, और एक के पिताजी है दादाजी भी उसे जीवित है, और दोनों बड़े हो गए पच्चीस पच्चीस वर्षों के हो गए, जिसके पांच सात वर्षों की अवस्था में बाप दादा मर गए और वो पच्चीस वर्ष का हुआ, और दूसरे बाप दादा उसके मौजूद है पच्चीस वर्ष का हुआ, दोनों में होशियार कौन सा होगा, आप जरा सोचो, व्यापार करने में काम धंधा करने में अच्छा श्रेष्ठ कौन सा होगा, जिसके बाप दादा काका बाबा सब बैठे हैं मौजूद है तो वो सुख में पला हुआ रह जाएगा ऐसे ही खाली, और दुख पड़ गया है वो यार बीस पच्चीस वर्षों का होने वाला इतना होशियार हो जाएगा, कहीं भेजो उसे राजी हो जाएगा, वो काम कर सकता है। तो दुख में जितना विकास होता है सुख में विनाश होता है, उतना विकास नहीं होता है। इस वास्ते आफत आने से आदमी का बड़ा सुधार होता है, जो लड़के सुधरते नहीं देखते उन लड़कों को अलग कर दो कि बेटा तुम कमाओ और खाओ, आप बताएगी तब पता लगेगा। उनको रुपया देना, ज्यादा प्यार करना, बिगाड़ना है, बेचारे को नरकों में ढकेलना है। ये माताओं में होती है ना दया, ये दया बड़ी घातक होती है। मोह होता है, मोह मेरा छोरा दुखी नहीं हो जाए और उद्दंडता करे, लड़ाई भी करे और पैसे खर्च भी कर दे, चोरी भी कर दे, बुरे मार्ग में भी लग जाए, फिर भी उसको रुपया दे। अरे बेचारे क्यों जलते हुए के भीतर में आग लगाओ, करासन क्यों डालते हो बाबा, आगे तो बढ़ रहा है बेचारा। वो डालते साहब, ये दया है माताओं की, दया दया का है, घातक है ये दया काम की नहीं है। इस वास्ते लाल ने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़िए न तो लालिए लालिए तो पंच वर्षाणी, पांच वर्षों तो लाड प्यार करो और तीसरे तो बस ताड़ना करो, शिक्षा दो। ताड़ना करना मारने का नाम नहीं है, शिक्षा देने का है। शिक्षा दो, अब पढ़ाओ, शासन में रखो, उद्दंड हो जाएगा, फिर थोड़ा मानेगा नहीं। ऐसे ही ब्याह किया आपकी बहू आई और उसको ही आते ही खुली छोड़ दो, वो सास की माने ना दादी की बन किसी मानेगी नहीं। और उसको रखोगे ना, फिर ऐसा करो, ऐसा करो, दो चार पाँच वर्ष रखो तो वो बहू सुधर जाएगी, उसका पतन नहीं होगा, और नहीं तो पतन हो जाएगा। उसके लिए लाभ नहीं है, उसको तो स्वतंत्रता अच्छी दिखती है, आए शादी दे दी, सब मिल गया, बेटा बन गया, उसे करो, पर उद्दंड हो जाएगी, वक्त पर आपको रोटी देने में मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं देना चाहेगी, आफत है, सास है। और प्यार से उनका पालन करो, स्नेह रखो, माँ से भी ज्यादा प्यार करो, परंतु ज्यादा स्वतंत्रता मत दो, उसके हित के लिए, अपने काम कराने के लिए नहीं, अपने काम की कामना से नहीं, इसका जीवन सुधरे। हमने ये बातें देखी है, जो जो स्वतंत्र रहे हैं वो बिगड़े हैं, और जो अच्छे पुरुष हैं, हमारे हितैषी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनकी आज्ञा में रहे हैं, उनका सुधार हुआ है, पर प्रत्यक्ष हमें अनुभव है इस बात का, हमने देखा, बड़ा लाभ होता है। पर प्रतंत्रता किन की, जो वास्तव में विज्ञ है और हितैषी है हमारे। दुष्टों के वश में होने से तो महाराज आप बता देगी, उनकी प्रबलता पतन करने वाली। पर दो को दुर्जन बागुरासे मेड़े जाता पुमान, दुष्ट तो आप पर जबरदस्ती कर देंगे और आपका पतन भी करेंगे, धन भी ले लेंगे, सब काम गड़बड़ी हो जाएगी। पर सज्जन पुरुष है, संत पुरुष है, उनकी प्रतंत्रता वो आप स्वीकार करोगे तब वो काम देगी, वे जबरदस्ती करते नहीं। साधु स्वभाव है, वे विशेष नहीं करते। एक बालक माँ के पास रहते रहते 10-12 वर्ष 15 वर्ष का हो गया, केवल माँ के सामने ही रहा। और एक बालक 15 वर्ष का हुआ तब तक बाप के पास में रहा, और एक बालक अध्यापक के पास, पढ़ाने वाले के पास में रहा, और एक बालक संत महात्माओं के पास रहा, और 15 वर्ष के हो गए चारों ही। आप विचार करो सुधार किसका होगा, माँ के पास रहने वाले का बिगाड़ होगा, वो सुधरेगा नहीं इतना, क्योंकि माँ का मोह ज्यादा होता है। बाप का मोह कम होता है तो बाप के पास रहने वाला सुधरेगा, और अध्यापक है, मास्टर है, उसके पास रहने वाला और ज्यादा सुधरेगा, और संत महात्माओं के पास में रहने वाला संत बन जाएगा, विलक्षण बन जाएगा। तो प्रतंत्रता भी, अच्छे पुरुषों की जितनी प्रतंत्रता है वो बड़ी उन्नति करती है, दुष्ट पुरुषों का प्रतंत्रपना दुखदायी होता है। इस वास्ते अच्छे पुरुषों का संग है वो बड़ा लाभदायक है, सत्शास्त्रों का पठन पाठन बड़ा लाभदायक है, बड़ा लाभदायक है, सद्विचार बड़ा लाभदायक है। इस वास्ते अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा दृश्य देखो भाई, नाटक सिनेमा में भी जो बुरे दृश्य देखते हैं उनका पतन हो जाता है, ऐसे भाई कई मिले हैं। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं, मेरे सामने ऐसे आदमी आए हैं नवयुग बिगड़े हुए, कहते हैं हम सिनेमा देखने से हमारा बड़ा पतन हो गया, बड़ी बड़ी गंदी गंदी उन्हें बातें पूछी कि मेरी बहन है कि बेटी है कि मौसी है क्या है, ये हमारे मन में नहीं रहता, बड़ा पतन हुआ है उनका। और सत्संग में रहने वाले, अरे परस्ती माते वोभ पर धने, परस्ती देखते ही माँ की तरह माँ आई, माँ 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 खुश हो जाती, खराब नहीं होता मन, कारण अच्छे संग में रहे हैं तो खराब रास्ते कैसे जाएंगे, वे खोटे रास्ते जा ही नहीं सकते। और कुसंग में पड़ा हुआ अच्छा रास्ता मिल नहीं सकता, बड़ी दुर्दशा होती है। गंदी गंदी बातें मैंने सुनी, छोरा छोरी साथ में पढ़ते उनकी क्या क्या दशा हुई है, मैंने कई बातें सुनी। ज्यादा मेरे काम नहीं पड़ता पर तो भी मेरे सुनने को मिली है, महान पतन होता है। परंतु आज छोटी अवस्था में तो छोरा छोरी को अधिक पढ़ाएंगे, 10-12-15 वर्ष की जाए फिर छोरा छोरी साथ ही पढ़ाएंगे। तुम बच्चा अवस्था में तो उतना पतन होता नहीं, अरे बड़ी अवस्था में पतन होता है। ये गदा 25 ही होती हो, 15 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक की ये 25 वर्ष की अवस्था गदा 25 ही है। इसमें अच्छी शिक्षा मिले तो ठिकाने लगे, नहीं तो बस कई पड़े कर पीतले कई जगह लगे वार, किन किन अवगुण नहीं किया ये बह चढ़ंती बात। ये जब खून बढ़ता है चढ़ता है उस समय में आदमी को सावधान रह करके हमारे जो बड़े हितेशी है बुद्धिमान है ऐसे बड़े बूढ़ों की आज्ञा में रहना चाहिए। बहनों माताओं को भी चाहिए अपने माँ की आज्ञा में रहो, बड़ी भौजाई दूसरी आज्ञा में रहो, सास में जाओ तो ससुराल में भी सास है जेठानी उनकी आज्ञा में देख रेख में रहो, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और अगर नहीं रहोगे फिर चलोगे तो फूट फूट जल्दी बड़े किराए की आरी। जीव स्वतंत्र रहे बिगड़े ही नारी, इसको लोग आज खराब समझते हैं। आज कहते हैं ये प्रतंत्रता करी है, प्रतंत्रता खराब वो है जो दुष्टों के वश में हो जाए और प्रतंत्रता वो आनंददायक है जो सज्जनों के वश में हो जाए। तो सज्जन को सज्जन बना देंगे, आप श्रेष्ठ बन जाओगे। और उश्रृंखल होने पर ये भोगों की और संग्रह की दो की इच्छा बड़ी जोरदार होगी, उससे पतन होगा। इस वास्ते सत्संग की बड़ी महिमा है। बुरी संगत मत जाए कुसंग का लांछन लगे रे, कुसंग का लांछन लग कलंक लग जाता। बुरे संग में जाने का बड़ा भारी पाप है। शास्त्रों में लिखा है चार महापातक है, चार मदिरा का पीना, ब्राह्मण की हत्या, गुरु पत्नी गमन, सोने रत्न आदि की चोरी, ये चार महापातक। ऐसे चार महापात करने वालों का 3 वर्ष संग कर ले तो संग करने वालों को वो दंड होगा जो महापात की वो होगा। मदिरा में बड़े भारी दोष बताए हैं, महान पतन होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले जमाने में अंग्रेजों ने जो पढ़ाई का प्रबंध किया उसमें हमने उसमें सुना था कि दारू का ठेका मदिरा का ठेका उसमें जो पैसे आते हैं वो विद्यालय में लगाए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना बुद्धि भ्रष्ट होगी नहीं विद्यार्थियों की। मदिरा का पैसा लगाओ जो बुद्धि भ्रष्ट होगी, अब मदिरा पिलाओ जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और गायों को मारो गायों का कोई अंग ले लेकर के कलेजा लेकर खून को लेकर और उनके जिगर को मांस को लेकर दवाएं बनी जाए वे खराई जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अच्छी धार्मिक बात ठहरेगी नहीं उनके भीतर, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ठहरेगा पात्र के बिना कैसे ठहरे, सिंघनी का दूध कहते हैं सोने के पात्र में ठहरता है। ऐसे असली बातें तो भीतर अंतकरण साफ होता वो होता है, बुरे बुरे व्यसन करते हैं और कहते हैं सत्संग की बात लगती नहीं, लगे जहां नहीं धेरे कागज पारा पारा है उसको कागज में लेकर रखो ठहर जाएगा टिक जाएगा, वो नहीं टिकेगा भाई। ऐसे आपका अंतकरण मैला है, अच्छी बात कैसे टिकेगी ठहरेगी नहीं। परंतु याद रखो सच्चाई में इतनी ताकत है कि सत्संग और सदविचार सत्शास्त्रों को पढ़ते रहो आपको शुद्ध भी बना देगा, पात्र भी बनाएगा, संग्रह भी हो जाएगा, दोनों काम कर देगा। पवित्र पात्र बना दे और संग्रह भी हो जाए, बड़े चीज भी आ जाए। अच्छे काम में लग जाओ, अच्छे संग में लग जाओ, अच्छी पुस्तकों में लग जाओ, बड़े भाग्य पाइए। सत्संग सत्संगों कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा बिन हरि कृपा मिले नहीं। सत्संग संता सत्संग संस्कृति का अंत जन्म मन का अंत करने वाली चीज है, ऐसा संग मिल जाए अच्छा तो समझना चाहिए भगवान ने बड़ी भारी कृपा की। जब द्रवय दिन दयाल उगो साधु संगति पाई है तो सत्संग का सत्शास्त्रों का सद्विचार का बहुत बढ़िया उपयोग है, काम में लाभ है, बड़ा महात्म्य है, बड़ा प्रभाव है, मनुष्य के उद्धार करने में बहुत काम करता है। सुमति कुमति सबके उर रही वेद पुराण संत सब कही। सबके हृदय में सुमति और कुमति रहते, पाप भी बढ़ते हैं पुण्य भी बढ़ते हैं, पुण्यों के संस्कार सुमति होती है और पापों के संस्कार कुमति होती है। अब कुमति फिर कुसंग मिल जाए बहुत पतन होगा जल्दी, और सत्संग मिल जाए तो कुमति मिलने वाले की भी कुमति काम नहीं करेगी, सद्बातों से कुमति नष्ट हो जाएगी। एक और बात है ध्यान देने की, सत्संग के सत्शास्त्रों के सद्विचारों के जो आपके संस्कार है वो सत है, इस वास्ते उसका नाश नहीं होता। कुसंग से खराब विचारों से वे दब जाते हैं, परंतु सत्संग का प्रभाव विशेष बन जाएगा तो कुसंग के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विनाशी चीज है, विनाशी चीजों के संस्कार भी विनाशी, अविनाशी के संस्कार भी अविनाशी, और आप भी अविनाशी, वो कल्याण करके छोड़ेंगे। इस बात थोड़ा भी सत्संग मिल गया है उसके चेत हो गया है तो बीच में न चेते तो न चेते अगारी जा चेतरंग जन्मांतर में चेतेगा, नहीं कल्याण कृत कृष्ण दुर्गतिम तात गच्छति। स्वल्पमप्य से धर्म से प्रायते महतो भयात जिज्ञास योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते। थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है, बड़ी उन्नति करता है। इस बात से अच्छे संस्कार पड़ जाए ये समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई है। बालक बैठा है उसके ऊपर हाथ धर करके पीठ को लेकर माँ खेसती है और गोदी में आ जाए तो मौज हो जाए। ऐसे सत्संग में जो भगवान की सत्संग मिलती है उसमें कोई खेचे और आ जाए तो समझना चाहिए कि हमारी कल्याणमयी माँ हमारे गोद में ले रही है, खेस रही है अपनी तरफ। अब वो भी ऐसा होता कि वो जो माँ का हाथ फेंक रही और उधर ही जावे, अरे ऐसे मत कर भैया, माँ है माँ, जिसने जन्म दिया है तेरा पोषण मात्रा समनाशी शरीर पोषणम, ऐसे भगवान के तुम अंश और भगवान की तरफ ले जाने का जो प्रयत्न करते हैं वो तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सबसे श्रेष्ठ है, जो अपने कल्याण में लगा देता उद्धार में लगा देता है। अरे वे माँ बाप भाई समुद्र क्या काम के जो पतन में लगा दे। आज तो बड़े दुख की बात है, लोग छोरा छोरी को खराब रास्ते ले जाते, पारमार्थिक मार्ग में नहीं ले जाते, फिर उदी का ही वो कंठ मसलते हैं, दुख पाएंगे कि छोरा मानता नहीं, तेने कैसा संग कराया, अब वो संग का फल भोग अब क्या होगा। आज संग कराते अच्छा तो अच्छा होता, परंतु आज छोरा छोरी बिगड़े उसको तो अच्छा मानते हैं, संसार में फंसे झूठ कपट बेईमानी सिनेमा नाटक थिएटर क्लब आदि आदि में जावे, खराब खराब चीजें खावे उनको तो मानते हैं अच्छा, और सत्संग करे भजन ध्यान उनको मानते हैं खराब। ठीक है उनकी दृष्टि में खराब ही है। हृणाक्ष ने ऋषभ ने कहा है प्रहलाद को, तुम्हारी कुमति कहाँ से आई, खोटी बुद्धि कैसे आई, हमारे राक्षस कुल में पल हो कुल कलंक लग गया, तेरी खोटी बुद्धि ये कहाँ से आई। भागवत ने प्रश्न किया है कुमति कहाँ से आई, ये दूसरे की दी हुई है कि स्वतः है। गुरु पुत्रों को पूछा कि क्या ऐसी खोटी बुद्धि कौन सिखा गया, महाराज ये परम प्रणीतान स्वप्रण अपने दूसरों के कहे हुए सुनता है, सीखता है, सूखता ही नहीं। हम कहते हैं शिक्षा देकर हार गए, मानता नहीं है। उसको पूछा रे खोटी बुद्धि आई कहां से हमारे स्कूल में, स्वतः पैदा हुई है कि किसने सिखा दी। तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि पिताजी ये न स्वतः पैदा होती है न कोई सिखा सकता, तो ये तो महापुरुषों के चरण रज्जी की कृपा हो जाती है, उससे मिलती है। गर्भ में था उस समय नारद जी महाराज मिले, हृणाक्ष गया तपस्या करने को, तो इंद्र को पता लगा, तो इंद्र ने लूटपाट की और इस कयाधु को जो माता थी प्रह्लाद की वो गर्भवती थी, उसको पकड़ ले गया। वो बेचारी चिल्ला गई, अबला क्या करे। नारद बाबा मिल गए, उसने कहा राम राम राम, इस अबला को क्यों तंग कर रहा है तू, स्त्री है इसको दुष्ट दुख दे रहा है। कि महाराज इसको दुख देने का तात्पर्य मेरा नहीं है, इसके पेट में गर्भ है, अकेला इसके बाप ने छोरे को जन्मेगा, इसके पति ने तंग कर लिया है, अरे ये बाप बेटा दो हो जाएंगे तो ये जन्मेगा तब मरूंगा इसको, नहीं तो ये पनप जाएगा जादे। नाथ जी महाराज ने कहा कि तुम घबराओ मत, इसका लड़का तुम्हारा बैरी नहीं बनेगा। तो नाथ जी की बात मानते थे, इतिहास में देखो राक्षस मानते, असुर मानते, देवता मानते, मनुष्य मानते, ऋषि मुनि मानते, नारद उसी बात रद्द नहीं होती, सब जगह चलती, सब जगह उसकी बात मानते। तो इंद्र ने भी मान लिया, कंस ने भी माना कि देखो सातवां गर्भ कौन सा होता है, ये बात भिड़ा देते हैं तो मान लेते हैं लोग, मान ली बात छोड़ दिया। तो इंद्र ने महाराज नारद जी ने कहा कि देखो बेटा तुम घबराओ मत, एक कुटिया में जाकर रख दिया, तुम यहाँ रहो अपना भजन करो, तुम्हारे पतिदेव आवेंगे तो मैं सौंप दूंगा, तुम यहीं बैठो। तो वहाँ रही जैसे बाप के घर पर रहती है कन्या, इस तरह से वहाँ महाराज ने रखा और सुनाई ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातें उसको नहीं सुनाई, उसके पेट में बालक है उसका लक्ष्य करके सुनाई। और वो छोटा सा नन्ना सा बालक बन रहा है, अभी मरा नहीं है पूरा, ऐसा बालक बनता है। उस बालक के ऊपर संस्कार पड़े भक्ति से, प्रहलाद भक्त हो गया, बचपन से ही भगवान में लग गया। तो गर्भ के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। बहनों माताओं को चाहिए कि आपकी बहन बेटी बहू कोई गर्भवती हो उसके अच्छे अच्छे संस्कार डालो, भगवान के चरित्र सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, भगवान की बातें सुनाओ, जिससे बालक आपका अच्छा जन्मे, सुपात्र जन्मे। तो नारद रहो बालक, माता रहो न लेश नारद के उपदेश को। नारद ने उपदेश दिया, माँ को याद नहीं रहा पर सो धारियो अशेष गर्भ माही ज्ञानी, गर्भ में धारण कर लिया। महाराज बालक के वो संस्कार पड़ गए, जितना ही छोटा बालक होता है उस पर उतना ही संस्कार गहरा पड़ता है। तो छोटे बच्चों का ख्याल रखो, उनके सामने चित्र अच्छे रखो, चरित्र अच्छे रखो, बातें अच्छी रखो, बालक सीखता है उस पर असर पड़ता है। इस वास्ते अच्छे संग का असर बालक पर ज्यादा पड़ता है, कोमल हृदय होता है। यह नवे भाग में लग्न संस्कारों नान्यता भवित, नया घड़ा खरीद करके कोले से लिख दो पक्का हो जाएगा, अरे पकने पर स्याही से लिखो रहेगा नहीं टूट जाएगा निकल जाएगा। ये पक्के हुए हैं आप, पक्के आते हैं, कच्चे आदमियों कम आते हैं। सत्संग करने वाले भी कई सोचते हैं सोरों को सत्संग में ले जाते नहीं, ये कच्चा है कच्चा, ये सत्संग लग जाएगी कहीं थोड़ा कच्चा है, हम पक पक जाएंगे खूब, पक तक पैर कभी एक नहीं लगे, ऐसे होशियार होकर जाते हैं सत्संग, थोड़ा कच्चा है। तो भाई नियत नहीं है, नियत होती है वो बच्चों को लगाते, बालक लग जाए किस तरह से। कुमारी आश्रय प्राज्ञ प्रहलाद जी ने कहा है कि देखो बालकों छोटी अवस्था में ही भजन में लग जाते हैं, वही श्रेष्ठ बनते हैं। इस वास्ते आप तो भजन करो, पाठशाला को भजनशाला बना दी मेरा सबको बच्चा दे, क्योंकि ऐसे प्रहलाद जी भक्त थे, दूसरे राज पुत्र थे, मेरा छोटे घराने के नहीं थे, बच्चे भी सब देखते हैं। पहले तो बच्चों ने आनाकानी करी, फिर उसकी बातें सुन सुन करके बड़े चकित हुए, आकृष्ट हो गए, खींच गए, वे सबके भजन कीर्तन करने लगे। गुरु जी आए, ये क्या दशा है, अरे पढ़ता कोई नहीं, सब भजन कीर्तन करते, बड़ा बुरा लगा। परंतु वो तो भरा लगा दिया अपना, प्रहलाद जी के मन में तो एक ही धुन थी बस, पिताजी ने गोद लिया, बेटा क्या पढ़े तुम्हारे को बढ़िया पढ़ाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ लक्षणों वाली भक्ति में तो बढ़िया अध्ययन मानता हूँ, बढ़िया पढ़ाई तो ये है, अरे ये बिगाड़ दिया, किसने बिगाड़ दिया। तो कुमती कहाँ से आई, कि जब तक महात्मा पुरुषों का संग नहीं करे तब तक ये मति ना तो पैदा होती है ना कोई सिखा सकता है। और सत्संग करने से उसके रंग लग जाता है, जैसा संग करे वैसा ही, तो अच्छे पुरुषों के संग से बड़ा लाभ होता है। तो अपने तो सच्चरिता करते हैं। कर्मों की बात कर रही थी तो कर्मों के जो संस्कार पहले के अच्छे होते हैं वो सत्संग सुनते ही बहुत ज्यादा लाभ ले लेता है, कम होते हैं कम होता है, परंतु सच्चे हृदय लग जाए कम वाला तो तेजी से पहले के संस्कारों से तेज हो सकता है। मनुष्य शरीर में बहुत ताकत है अगाड़ी बढ़ने की, शक्ति दी है भगवान ने, तो तत्परता से करो तो बहुत तेजी से हो जाएगी। ऐसे सत्संग में रहने वाले पुरुषों के विषय में हमने सुना है जो चार पांच नंबर पीछे थे एक नंबर के सत्संग में हो गए, ऐसी बीती हुई बातें है। तो भैया उद्योग करेगा तो वो तो जल्दी कर लेगा, इस विषय में उद्योग काम करता है, पुरुषार्थ काम करता है। धनादि में उद्योग करो, उद्योग करने धन मिल जाए ये नियम नहीं है, पर पारमार्थिक उन्नति होती है नियम है, ये कभी फैल नहीं होता कि उसके लिए ही मानव शरीर मिला। इस वास्ते अच्छे काम में लगो, बुरे कर्मों का त्याग करो। राम 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 हरे मोरारे। थोड़ा ठहरो, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण,
थोड़ा ठहरिया है थोड़ी देर। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
गोविंदा हरे मोरारे।